एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी आवाज के पीछे की कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसी आवाज जिसने पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया, लेकिन जिसका जीवन उफ किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं था। विवाद, ताकत, शोहरत और गहरे राज।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं फ्रैंक सिनात्रा की, और हमारी इस पड़ताल का आधार है एंथनी समर्स की बहुत चर्चित और कहना चाहिए कि गहन शोध पर आधारित किताब सिनात्रा द लाइफ।
बिल्कुल, और समर्स की किताब सिनात्रा को सिर्फ एक गायक या एक्टर के तौर पर नहीं देखती, वो उन्हें 20वीं सदी के अमेरिका का एक जीता जागता विरोधाभास मानती है।
विरोधाभास किस तरह का?
उनका तर्क ये है कि सिनात्रा की जो बेमिसाल कला थी, वो उनके निजी संघर्षों, उनके तूफानी रिश्तों और संगठित अपराध यानी माफिया के साथ उनके जो उलझे हुए संबंध थे, उनसे अलग करके देखी ही नहीं जा सकती।
अच्छा,
ये किताब इसी पहेली को मतलब सुलझाने की कोशिश करती है कि भाई कैसे एक ही इंसान इतना संवेदनशील कलाकार और इतना निर्मम व्यक्ति हो सकता है।
तो ये सफ़र तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। होबोकन, न्यू जर्सी की गलियों से निकलकर अमेरिका का कल्चरल आइकन बन जाना और फिर इस शोहरत के पीछे की परछाइयाँ। समर्स की नज़र से हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। क्या ये विरोधाभास उनके शुरुआती सालों में भी नजर आते थे?
हाँ बिल्कुल, सिनात्रा का जन्म 1915 में होबोकन में हुआ, एक इतालवी अमेरिकी अप्रवासी परिवार में। उनकी माँ डॉली सिनात्रा एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत थी।
हाँ, सुना है उनके बारे में, काफी दबंग थी।
बहुत, वो राजनीतिक रूप से सक्रिय थी और समर्स बताते हैं कि वो एक अवैध गर्भपात क्लिनिक भी चलाती थी।
क्या, अवैध गर्भपात क्लिनिक? ये तो
हाँ चौंकाने वाली बात है, और जाहिर है ये सब फ्रैंक देख रहे थे, समझ रहे थे, तो एक तरह से उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा कि ताकत का खेल कैसे खेला जाता है, राज कैसे रखे जाते हैं और कैसे रिश्ते भी मतलब लेन देन पर चलते हैं।
तो ये जो माँ का अवैध काम था, समर्स कैसे बताते हैं कि इसका असर युवा फ्रैंक पर और कैसे पड़ा, सिवाय इसके के शक्ति और गोपनीयता सीख ली?
समझ इशारा करते हैं कि इसने शायद फ्रैंक में कानून और नियमों को लेकर एक खास, कह सकते हैं, लचीला नजरिया पैदा किया। वो इकलौते बेटे थे, उन्हें बहुत लाड़ प्यार मिला जिसने उनमें एक तरह की हक की भावना, इंटाइटलमेंट पैदा की।
हाँ, कि मैं तो खास हूँ।
बिल्कुल, लेकिन साथ ही उस दौर में इतालवी अमेरिकन होना उन्हें बाहरी होने का एहसास भी कराता था, तो ये असुरक्षा और ये हक की भावना, इसका एक अजीब सा मिश्रण उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। एक तरफ भरपूर आत्मविश्वास, दूसरी तरफ गहरी असुरक्षा।
यानी नींव में ही ये तनाव मौजूद था। अच्छा, और फिर संगीत, वो आवाज जिसने दुनिया को मोह लिया, उसका सफर कैसे शुरू हुआ? सुना है आसान नहीं था बिल्कुल।
नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत हुई बैंड सिंगर के तौर पर, पहले हैरी जेम्स के साथ, फिर वो टॉमी डॉर्सी के ऑर्केस्ट्रा में गए।
हाँ, टॉमी डॉर्सी, वो तो काफी सख्त माने जाते थे, है ना?
बिल्कुल, बहुत सख्त, पर सिनात्रा ने वहीं से मतलब गायकी की बारीकियां सीखी, खासकर वो सांस लेने की तकनीक
जिसने उनकी आवाज को वो खास अंदाज दिया, एकदम मुलायम।
हाँ, वही रेशमी मुलायमियत। फिर 1940 के दशक में जब उन्होंने अकेले गाना शुरू किया, तो समझ लीजिए रातों रात सनसनी बन गए। ये वो दौर था जिसे बॉबी सॉक्सर क्रेज कहते हैं।
बॉबी सॉक्सर, यानी उस जमाने के टीनेज फैंस, वो जुराबों वाला फैशन।
हाँ हाँ, उस दौर की टीनेज लड़कियों के पहनावे, खासकर उनके सॉक्स से ये नाम जुड़ा था। वो पागल थी उनके पीछे, कॉन्सर्ट में चीखना रोना। वो अमेरिका के पहले पॉप सुपरस्टार थे, पहले टीन आइडल कह सकते हैं।
वाह, लेकिन समर्स बताते हैं कि इसी शोहरत के दौर में उनके माफिया से रिश्ते भी बनने शुरू हुए।
हाँ, यही वो दौर था। कहा जाता है कि विली मुरैटी नाम के एक माफिया बॉस ने उन्हें टॉमी डॉर्सी के बहुत ही सख्त कॉन्ट्रैक्ट से निकालने में मदद की थी।
अच्छा, तो ये एक तरह का एहसान था।
हाँ, और शायद एक ऐसा एहसान जिसने उन्हें माफिया की दुनिया के और करीब ला दिया, एक ऐसा रिश्ता जो फिर जिंदगी भर उनका पीछा करता रहा।
लेकिन फिर 50 के दशक की शुरुआत में सब कुछ बिखरने लगा, जैसे एकदम से करियर, आवाज।
हाँ, वो उनके जीवन का शायद सबसे बुरा दौर था। रिकॉर्ड्स बिकने बंद हो गए, टीवी शो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, और सबसे बड़ा सदमा, उनकी आवाज चली गई।
आवाज चली गई, मतलब कैसे?
उनके वोकल कॉर्ड्स में, गले की जो नाजुक स्वर ग्रंथियां होती हैं, उनमें रक्त स्राव हेमरेज हो गया था। वो गा नहीं पा रहे थे। डॉक्टर भी पक्का नहीं कह पा रहे थे कि आवाज वापस आएगी भी या नहीं।
हे भगवान, एक गायक के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है?
उनका रिश्ता शुरू हुआ। ये रिश्ता उफ, जुनून, झगड़ों, हिंसा और पब्लिक में तमाशों से भरा था। कहते हैं दोनों ने एक दूसरे को लगभग तबाह कर दिया। मीडिया में उनकी इमेज की धज्जियां उड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बस सिनात्रा का चैप्टर क्लोज हो गया।
सोचकर भी डर लगता है, लेकिन फिर वो वापसी हुई जिसने सब बदल दिया। फिल्म फ्रॉम हेयर टू इटर्निटी, वो कैसे हुआ?
हाँ, वो बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा था। उन्होंने 1953 की इस फिल्म में प्राइवेट एंजेलो मैगियो के एक छोटे से रोल के लिए अपनी पूरी जान लगा दी।
वही रोल जिसके बारे में कहा जाता है कि माफिया ने दिलवाया था, जैसे गॉडफादर में दिखाते हैं।
हाँ, वो अफवाहें बहुत थी। समर्स इस बात की भी पड़ताल करते हैं। उन्हें कोई सीधा सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य कुछ बातें इस तरफ इशारा जरूर करती हैं। खैर, वजह जो भी रही हो, सिनात्रा ने उस रोल में जान डाल दी और नतीजा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर।
वाह, ये महज वापसी नहीं थी, ये तो एक तरह का पुनर्जन्म था।
बिल्कुल सही था। ये सिर्फ करियर की वापसी नहीं थी, ये सिनात्रा 2.0 का जन्म था। इसने उन्हें एक नई, ज्यादा परिपक्व, थोड़ी सख्त और
रहस्यमयी छवि दी।
हाँ,
और समर्स का तर्क है कि आवा गार्डनर वाले दर्द ने इसमें मदद की।
हाँ, समर्स का एक मुख्य तर्क यही है कि आवा गार्डनर के साथ जो विनाशकारी रिश्ता था, उसने सिनात्रा को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया बुरी तरह। लेकिन यही दर्द, यही टूटन उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत बनी। इसी से उनकी गायकी में वो गहराई आई, वो दर्द को समझने और बयां करने की क्षमता, जिसने उन्हें पॉप गानों के गायक से कहीं आगे अकेलेपन और दिल टूटने के दर्द को आवाज देने वाला महान कलाकार बना दिया। अब उनकी कला में जिंदगी का तजर्बा झलक रहा था।
तो ऑस्कर के बाद तो वो हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बन गए। इस दौर की उनकी उनंदरियां क्या रही फिर?
हाँ, ऑस्कर ने जैसे सारे दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कैपिटल रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर कुछ कालजयी एल्बम्स बनाए, जैसे इन द वी स्मॉल आवर्स या सॉन्ग्स फॉर स्विंगिंग लवर्स।
हाँ, ये तो क्लासिक्स हैं।
बिल्कुल। और ये सिर्फ गानों का कलेक्शन नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट एल्बम थे। मतलब ऐसे एल्बम्स जहां सारे गाने एक ही मूड, एक ही थीम या एक कहानी के इर्द गिर्द बुने होते हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट को बहुत पॉपुलर बनाया और उनकी गायकी में अब वो तजुर्बा, वो वजन साफ सुनाई देता था।
और इसी दौर में रैट पैक का जलवा भी शुरू हुआ। वो डीन मार्टिन, सैमी डेविस जूनियर।
हाँ, वो डीन मार्टिन, सैमी डेविस जूनियर, पीटर लॉफर्ड, जॉय बिशप, इनके साथ फ्रैंक रैट पैक के अनऑफिशियल लीडर बन गए। ये ग्रुप अपनी कूल इमेज, अपनी यारी दोस्ती और खासकर लास वेगस के स्टेज शोज के लिए मशहूर हुआ। उन्होंने वेगस को एंटरटेनमेंट का मक्का बना दिया, कह सकते हैं।
लेकिन इसी वेगस में उनके वो माफिया वाले कनेक्शंस और गहरे हुए।
हाँ, वेगस में उनके व्यावसायिक हित भी बढ़े। उन्होंने कैसिनो में हिस्सेदारी ली और माफिया द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले कैसिनोज के लिए वो एक बड़ा आकर्षण, एक बड़ा चेहरा बन गए। शिकागो के जो ताकतवर माफिया बॉस थे, सैम जियानकाना, उनके जैसे लोगों से सिनात्रा की दोस्ती और गहरी होती गई। और अब ये बातें उतनी छिपी हुई नहीं थी जितनी पहले थी।
अच्छा, मतलब शोहरत के साथ साथ विवाद भी बढ़ रहे थे और राजनीति में भी उनकी दखलंदाजी बढ़ी इस दौरान।
बिल्कुल, उनका जो गुस्सैल स्वभाव था वो भी अब ज्यादा सामने आने लगा था। पत्रकारों से भिड़ जाना, होटेल स्टाफ से बदसुलूकी या किसी अनजान से भी उलझ पड़ना, ऐसी खबरें आम हो गईं। और हाँ, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी। 1960 में उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कॉन्सर्ट्स किए, फंडरेजिंग में मदद की।
और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कैनेडी और माफिया के बीच कोई डील करवाई थी वोट्स के लिए।
हाँ, समर्स एफडीआई की फाइलों का हवाला देते हुए इस संभावना पर बात करते हैं कि सिनात्रा ने शायद कैनेडी कैंपेन और सैम जियानकाना के बीच पश्चिम वर्जीनिया और इलिनॉइस जैसे कुछ अहम राज्यों में यूनियन वोट जुटाने के लिए कड़ी का काम किया होगा। ये बहुत संगीन आरोप है, पर समर्स इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में सबूतों को देखते हैं।
बाप रे, तो क्या कैनेडी के जीतने के बाद सिनात्रा को इसका इनाम मिला, व्हाइट हाउस में रुतबा बढ़ा?
नहीं, यही कहानी में एक और बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। कैनेडी चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी जो अटर्नी जनरल बने, वो माफिया के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहे थे।
बॉबी कैनेडी।
उन्होंने जेएफके को सलाह दी कि सिनाट्रा के जो पब्लिक माफिया कनेक्शंस हैं वो राष्ट्रपति की इमेज के लिए ठीक नहीं है, और नतीजा जेएफके ने सार्वजनिक रूप से सिनाट्रा से दूरी बना ली। यहां तक कि केनेडी ने सिनाट्रा के घर पाम स्प्रिंग्स में रुकने का अपना पहले से तय कार्यक्रम भी रद्द कर दिया।
ओह, ये तो सिनाट्रा के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जबरदस्त अपमान।
अपमान, ये उनके लिए कुचल देने वाला अपमान था। सोचिए, जिस स्वीकृति के लिए वो शायद जिंदगी भर तरसते रहे, वो व्हाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर उनसे छीन ली गई। समर्स बताते हैं कि इस घटना ने सिनाट्रा को बहुत कड़वा बना दिया। उनका डेमोक्रेटिक पार्टी से मोह भंग हो गया और बाद के सालों में वो रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रीगन जैसे रिपब्लिकन नेताओं के मुखर समर्थक बन गए।
बाद में उन्होंने मिया फेरो और फिर बाबरा मार्क्स से शादी की। लेजेंड तो बन ही चुके थे।
हाँ, वो एक लिविंग लेजेंड बन चुके थे, लेकिन वो गुस्सा, वो विरोधाभास, वो गहरी असुरक्षा, समझ दिखाते हैं कि ये सब अंत तक उनके साथ रहा। उनकी कहानी वाकई कमाल की है।
वाकई, इतनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी। समर्स की किताब के आईने में अगर देखें तो सिनाट्रा को चलाने वाली ताकतें क्या थीं? क्या था उनका जीवन दर्शन, उनका फंडा?
समर्स की पड़ताल से कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली तो है ताकत और मंजूरी की कभी न खत्म होने वाली भूख।
हाँ, वो बाहरी होने का एहसास शायद।
बिल्कुल, अपनी इतालवी अमेरिकी जड़ों की वजह से वो हमेशा वैधता, कंट्रोल चाहते थे, चाहे वो संगीत में परफेक्शन से मिले या दौलत से या फिर राजनीतिक रसूख से। केनेडी वाली अस्वीकृति इसीलिए इतनी गहरी चोट थी क्योंकि वो मंजूरी की सबसे बड़ी मोहर होती है ना।
सही। और दूसरा?
दूसरी बात है शोहरत के पीछे छिपी गहरी असुरक्षा। बाहर से वो जितने कॉन्फिडेंट दिखते थे, अंदर से उतने ही वल्नरेबल थे। उन्हें लगातार तारीफ चाहिए थी, मान्यता चाहिए थी। रिश्तों में, खासकर आवा गार्डनर के साथ, वो हद से ज्यादा पजेसिव और ईर्ष्यालु थे, और जरा सी आलोचना या अपमान उन्हें हिंसक बना सकता था। उनका ईगो बहुत नाजुक था। तीसरा क्या था?
तीसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू है कला और क्रूरता का वो अजीब संगम।
हाँ, ये समझना मुश्किल है, इतना दर्द भरा गाने वाला इंसान इतना निर्मम कैसे हो सकता है ना? उनकी कला में जो गहराई थी, जो दर्द छलकता था, अकेलेपन का, टूटे दिल का, वो उनके निजी जीवन की क्रूरता और गुस्से के बिल्कुल उलट लगती है। लेकिन समर्स कहते हैं कि ये दो अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जिस कच्ची भावना, जिस रॉ इमोशन से उनका गुस्सा फूटता था, उसी को वो तराश कर अपनी कला में ढालते थे।
अच्छा, ये दिलचस्प नजरिया है। और
एक और बात थी, हर चीज पर नियंत्रण का जुनून। अपनी इमेज, अपना संगीत, अपने आसपास के लोग, सब पर पूरा कंट्रोल चाहते थे, और ये जुनून अक्सर उनके रिश्तों के लिए घातक साबित हुआ। आलोचना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि वो कंट्रोल खो रहे हैं।
और वफादारी, उसके क्या मायने थे उनके लिए?
हाँ, वफादारी, वो दूसरों से तो पूरी वफादारी चाहते थे, लेकिन खुद वफादारी निभाने और धोखा देने दोनों में माहिर थे। उनके लिए रिश्ते अक्सर लेन देन जैसे थे, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
और आखिर में वो फलसफा के परफॉर्मेंस ही सब कुछ है।
आपकी एकमात्र जिम्मेदारी एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ऐसा लगता है जैसे वो मानते थे कि उनकी कलात्मक महानता उनके व्यक्तिगत दोषों को या तो ढक सकती है या उन्हें जायज ठहरा सकती है।
वाकई एक बेहद जटिल शख्सियत उभर कर सामने आती है। अगर हम सिनाट्रा का जीवन के कुछ ऐसे मोड़ों की बात करें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, मतलब टर्निंग पॉइंट्स, तो समर्स किन घटनाओं को सबसे अहम मानते हैं?
समर्स तीन ऐसे खास निर्णायक मोड़ बताते हैं जिन्होंने सिनाट्रा की कहानी को असल में गढ़ा।
पहला कौन सा?
पहला, आवा गार्डनर का दौर। वो पतन और फिर पुनरुत्थान, ये उनके जीवन का भावनात्मक एपिसेंटर था कह सकते हैं। इस रिश्ते के जुनून और दर्द ने उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था। करियर, आवाज, मानसिक शांति, सब दांव पर था। लेकिन जैसा हमने कहा, समर्स का तर्क है कि यही वो आग थी जिसमें तपकर सिनाट्रा महान कलाकार बने। फ्रॉम हेयर टू इटर्निटी का ऑस्कर इसी दौर की देन था। ये वो बिंदु था जहां विनाश ने ही सृजन को जन्म दिया।
और दूसरा?
दूसरा टर्निंग पॉइंट था खुद वो ऑस्कर जीतना फ्रॉम हियर टू इटर्निटी के लिए। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी सत्ता की वापसी का ऐलान था। इसने साबित कर दिया कि उन्हें खत्म नहीं माना जा सकता। इसने उन्हें एक नई ज्यादा गंभीर, ज्यादा सख्त छवि दी, और हाँ, माफिया के साये की अफवाहों ने उनकी रहस्यमयी आभा को और गाढ़ा कर दिया। भले ही वो अफवाहें कितनी सच थीं, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहा।
सही। और तीसरा सबसे अहम मोड़,
तीसरा था कैनेडी भाइयों द्वारा सार्वजनिक तौर पर ठुकराया जाना।
जी,
जैसा हमने बात की, जेएफके के लिए इतनी मेहनत और वफादारी दिखाने के बाद माफिया कनेक्शन के चलते व्हाइट हाउस के करीबी घेरे से बाहर कर दिया जाना, ये उनके लिए एक जबरदस्त व्यक्तिगत और सार्वजनिक अपमान था। इसने सिनात्रा के मोहभंग को पूरा कर दिया, उन्हें राजनीतिक रूप से दूसरी दिशा में मोड़ दिया, और सत्ता व स्वीकृति के लिए उनकी जो एक बेचैनी थी उसे दुनिया के सामने ला दिया। ये उनके जीवन की बड़ी त्रासदियों में से एक था शायद।
सिनात्रा की कहानी ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं लगती, आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं, इसमें हमारे लिए मतलब आम लोगों के लिए क्या मानवीय सबक छुपे हैं?
बिल्कुल, ये कहानी कई मायनों में हमें आईना दिखाती है। पहली बात तो ये कि इंसान कितना जटिल होता है।
हाँ, कोई भी सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता।
सही कहा, सिनात्रा की कहानी याद दिलाती है कि लोग अच्छे या बुरे के इन आसान खांचों में फिट नहीं होते। हम सब विरोधाभासों से बने हैं। किसी को समझने के लिए उसकी पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी।
महानता और गंभीर कमियां एक ही इंसान में साथ रह सकती हैं।
और अहंकार और असुरक्षा, उसका क्या सबक है?
उनकी कहानी दिखाती है कि बेलगाम अहंकार और गहरी असुरक्षा, ये कैसे इंसान को खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरनाक बना सकती है। ये हमें विनम्रता और भावनात्मक संतुलन की अहमियत बताती है कि बाहरी दिखावे के पीछे की सच्चाई कुछ और हो सकती है।
और अतीत का असर, जैसे उनकी माँ का प्रभाव। हाँ, कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमारे बचपन के अनुभव, हमारे शुरुआती रिश्ते, जिंदगी भर हमारे फैसलों और बर्ताव को अनजाने में ही सही पर प्रभावित करते रहते हैं। खुद को समझने के लिए अपने अतीत की परछाइयों को पहचानना जरूरी है।
और एक सकारात्मक बात भी है शायद, दर्द से रचनात्मकता वाली।
बिल्कुल, ये कहानी उम्मीद भी देती है, दिखाती है कि कैसे निजी तकलीफ और कमजोरी को रचनात्मकता की ताकत में बदला जा सकता है। मुश्किल भावनाओं का सामना करके ही शायद सच्ची और असरदार कला जन्म लेती है, जैसा सिनात्रा के संगीत में हुआ, खासकर उस वापसी के बाद।
और आखिर में वो नैतिक समझौते सफलता के लिए।
हाँ, वो एक बड़ा सबक है। सिनात्रा ने कामयाबी के लिए कई नैतिक समझौते किए, खासकर माफिया के साथ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए चुने गए रास्ते कितने मायने रखते हैं। क्या साध्य साधन को हमेशा सही ठहरा सकता है? समर्स की किताब दिखाती है कि अक्सर गलत रास्ते या तो मंजिल तक ले ही नहीं जाते या फिर उसकी कीमत बहुत भारी होती है।
ये बहुत गहरी बात है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर श्रोताओं को तीन मुख्य बातें याद रखनी हो, तीन टेकअवेज, तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से समर्स की किताब और सिनात्रा के जीवन से तीन सबसे जरूरी निष्कर्ष ये हैं।
पहला,
एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। बाहरी सफलता, शोहरत, दौलत, ये सब इंसान की अंदरूनी असुरक्षा और अकेलेपन को खत्म नहीं कर सकती। सिनात्रा का जीवन ये दिखाता है कि इंसान की सबसे गहरी भावनाएं, खासकर प्यार में मिला दर्द और दिल का टूटना, कला का सबसे शक्तिशाली और सबसे सच्चा ईंधन बन सकता है। उनकी सबसे बेहतरीन कला उनके सबसे मुश्किल दौर की पैदाइश थी।
दूसरा,
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। सिनात्रा की कहानी 20वीं सदी के अमेरिका में शो बिजनेस, संगठित अपराध और राजनीति के बीच के पेचीदा, अक्सर नाजायज और खतरनाक गठजोड़ को बेनकाब करती है। ये दिखाती है कि ताकत सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, वो समझौतों और रिश्तों से भी बनती है। और जिसे हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, उसका एक स्याह पहलू भी है, जहां सफलता के लिए नैतिकता को कुर्बान किया जा सकता है।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक।
हाँ, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। किसी भी इंसान की विरासत, उसकी कहानी हमेशा जटिल होती है, कभी सीधी सपाट नहीं। हम सब किसी न किसी हद तक सिनात्रा की तरह ही विरोधाभासों का पुलिंदा है। परफेक्ट होने की कोशिश करने या दूसरों को आसानी से जज करने के बजाय अपनी और दूसरों की पूरी इंसानियत को, ताकत और कमजोरी दोनों को समझना और स्वीकार करना शायद ज्यादा जरूरी और सार्थक है। सिनात्रा की कहानी हमें इसी जटिलता को स्वीकार करने की चुनौती देती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।